आकाशवाणी बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा से एक साथ प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
ऊँटारी बाता, ऊँटारी बाता कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊँट पालक बहन है भूमजी भाई और
गौरा बेन रघुनान गणा। राम राम।
राम राम गौरा बेन।
राम राम भोमजी भाई। राम राम भोमजी भाई।
हाँ।
महीनो है जून रो।
हाँ।
टाबर अरे छुट्टियां चाल रही है।
हाँ।
और चारू काने टाबर फिरे कुदड़का मारता फिरे के नहीं फिरे।
अरे बात तो है गौरा बेन, पर इन माय नई बात कही है। देखो आ तो इन ऋतु माय हर बरस आवे।
भोमजी भाई बात आई तो मोटी है बरसा रीज के गाँव रे मायने जब टाबरा ने बिनणिया ने देखू नी जने लागे के भगत तो माटी री भांति पिसल गयो आपानो तो।
खरी कही गवरा बहन, लाग तो के हाल तो घणो ही बखत है पर हाल तो उम्र ही कही है। एडी बात सोचता
सोचता नी पर भोमजी भाई थे ही सोचता मैं ही सोचती और थे मैं कही।
हाँ।
उम्र भी त्या घना ही जना सोचा है पर इन सारू एक दू सुनाए दू थाने।
अरे इन सारू गवरा बहन सोचो मत झट करता सुनाए दो।
तो सुनो भोमजी भाई, वोई घर वोई आंगणो, वोई घर वोई आंगणो, वोई सजन रो गांव, बीनणी बीनणी कहता डोकरी पड़ गयो नाम।
डोकरी पड़ गयो नाम, सोला ने खरी गई गौरा बहन। अर उम्र साथे देखो इनी बात नाव बदले अर उम्र किया निकल जावे ठाई नहीं पड़े। पहला देखो नान्यो कियो कहता
मोटियार
के उन लाग जाए पछे खाखू सा दादू सा नाम बदलते ही जावे।
और लारू काई केवन लाग जाए के डोकरो बैठो है डोकरी बैठी है बा दादो सा दादी सा कोनी केवे भोमजी भाई। पण देखो एड़ी बात सोच रही मैं तो चौपाल में आ जाऊं के उम्र गई तो गई इन जून रे मायने देखो कोई चोखो काम करला नहीं तो आ जून तो पार हो जाई। जिन बात पड़िया धनरा कोयला हुए नी इनी बात देखो जून बीत जावे कोई न कोई चोखो काम करना है तो हाल ही थोड़ी गणी जीवन तो पड़ियो ही है।
अरे गौरा बहन डोकरा डोकरी हुआ तो कहीं हुआ, जीवन रो अनुभव और राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र की मेहनत सु नवी पीढ़ी रे टापरा रे जीवन माए तो चानणो करी जावला।
पण देखो बोमजी भाई आज ऊंट पाल का सारू ज्ञान रो चानणो लेर पावणा कुण पधारिया है।
अरे गौरा बहन पावणा पधारिया है डॉक्टर शरद चंद्र मेहता और आप प्रधान वैज्ञानिक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। आज हम बातचीत कराला उन्नत उष्ट प्रजनन एवं दुग्ध उत्पादन विषय पर।
पण सगला पहला यहाँ स्वागत करो राम राम तो करला।
बिल्कुल सा डॉक्टर साहब आप रो चौपाल में घणो घणो स्वागत है आपने में करा।
राम राम सा।
राम राम बोमजी भाई। राम राम गौरा बहन।
देखो बोमजी भाई जेण बात बिना पानी आटो होसनी जनी इनी बात आपा कितनी बातां करला नी पण पावणा बिना आपाणी बातां पूरी नी हो सके है। और आज थे बात करी है उन्नत उष्ट प्रजनन और दुग्ध उत्पादन दी। तो सगला पहला तो देखो डॉक्टर साहब आई समझ ला के उन्नत उष्ट प्रजनन केवे किण है इनरो अभिप्राय कही है पहला तो आ समझा पर लारली बातां सुना।
देखो सा उन्नत उष्ट प्रजनन से हमारा जो आशय है, प्रजनन तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये होती है गाँव में जंगलों में सभी जगह हो जाती है, लेकिन ऊँट के लिए इसका विशेष महत्व है। और वो विशेष महत्व इसलिए है कि ऊंट प्रजनन के हिसाब से बहुत ही धीमा पशु है। धीमा पशु इसलिए कि एक तो इसकी प्रजनन की प्रथम उम्र भी जो है 4-5 साल होती है, उसके बाद ये ऋतु के आधार पर प्रजनन करता है। तीसरा इसके साथ एक सीमा है कि इसमें कृत्रिम गर्भाधान भी नहीं अभी तक संभव हो पाया। तो इन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हैं तो अगर हम जैसे प्रजनन होता आया होता रहे तो हम जितनी प्रगति हम चाहते हैं अनुवांशिक गुणों में उत्पादन में वो हम नहीं कर पाएंगे।
मैं देखो उठा रहे बड़ा वेरी बात करा संवर्धन की बात करा तो नीवरी बात तो आई है, मूल मुद्दे की बात तो आई है कि उष्ट प्रजनन किया करा और वो भी उन्नत।
और उन्नत प्रजनन और प्रबंध की जरूरत कई है आप हमें बताओ सर, कहना मतलब है कि क्यों जरूरी है?
सही तरीके से सही समय पर इनका प्रजनन नहीं करेंगे, जैसे नर का चुनाव हो, मादा का चुनाव हो, उत्पादन क्षमता के लिए चुनाव हो, कार्य क्षमता के लिए चुनाव हो, ये सारी चीजें हमें इसमें ध्यान रखने वाली होती है। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी भी दूंगा सभी ऊंट पालकों के लिए कि एक नस्ल का विकास होता है और इवन एक जो कोई भी पशु होता है उसका एक विकास होता है। कहते हैं कि ऊंट जो है उत्तरी अमेरिका में जब शुरू हुआ तो उत्तरी अमेरिका में हुआ करता था, वहां से ये मध्य एशिया में आया और मध्य एशिया से ये भारत और अफ्रीकी देशों में गया। जब हम देखते हैं कि भारत में ये हमारे जो रेगिस्तानी इलाके हैं या पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाके हैं या सिंध का जो क्षेत्र है वहाँ इस क्षेत्र में ये पाया जाता है, समय के अनुसार और जरूरत के अनुसार इसमें नस्लों का विकास हुआ। जैसे हमारे बीकानेर और आसपास का जो क्षेत्र है उसमें ये बोझा ढोने के लिए बीकानेरी नस्ल हुई, लेकिन जब हम देखते हैं जैसलमेर और उसके आगे हम जाते हैं थारपारकर का एरिया आता है तो वहां पे हम ये देखते हैं कि पुराने समय में हमारे को भारत से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक की तरफ सामान ले जाने के लिए एक नस्ल की जरूरत थी, तो वो अच्छी चलने वाली नस्ल, कम समय में ज्यादा दूरी तय करने वाली एक नस्ल की जरूरत थी, वो जैसलमेरी नस्ल इस तरह उस समय पैदा हुई। लेकिन जब हम थोड़ा सा देखते हैं कि सिंध नदी आ जाती है और जब हम नीचे कच्छ की तरफ जाते हैं तो कच्छ का रण आ जाता है। अब वहां दलदल के लिए उपयुक्त एक नस्ल चाहिए थी, काम वहां भी लोगों को लेना था, तो कच्छ के रण में कच्छी नस्ल उत्पन्न हुई और उसी तरह सिंध का जो डेल्टा क्षेत्र है उसमें सिंधी नस्ल बनी। कहीं हम थोड़ा सा इधर आते हैं तो पथरीला क्षेत्र आ जाता है मेवाड़ी नस्ल का, वो पथरीला क्षेत्र के लिए उपयुक्त नस्लें बनी। इन सब चीजों को जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इनका एक उपयोग समय के अनुसार था और समय के साथ उपयोग में परिवर्तन हुआ। और हम प्रजनन की भी आज इसीलिए बात करते हैं कि जैसे जैसे उपयोग में परिवर्तन हो वैसे वैसे हमें भी उसकी चयन प्रक्रिया में परिवर्तन करना चाहिए। इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए और इस कारण ही इसका बहुत
भाई बोम जी भाई देखो डॉक्टर साहब तो बढ़िया गुणिया है जने प्रबंधन की जरूरत कही है क्यों री बात की क्यों जरूरी है आपने चोखी तरीके समझा दियो। पर देखो अपन ऊंट पालक है वो गांव गांव ढाणी ढाणी बैठो है, कोई बनियोडो है कोई अनबनियो भी है पर ऊंट पालन तो करे ही है। तो अभी डॉक्टर साहब ने पूछा की वे उन्नत प्रजनन क्या करे।
देखो साहब दो चीजें इस वक्त बताना चाहूंगा, एक तो प्रजनन में अच्छे नर या मादा का चयन और दूसरा होता है कि प्रजनन विधि में कोई उन्नत विधि हो। हम उन्नत विधि में तो जो कृत्रिम गर्भाधान हुआ या भ्रूण प्रत्यर्पण हुआ या जीन आधारित चयन हुआ इन चीजों की हम अभी इतनी बात नहीं करेंगे। हम जो मुख्य बात करेंगे जो गांव का किसान आसानी से कर सके। अब जैसे एक गांव का किसान है और उसको एक नर ऊंट छांटना है तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो नर ऊंट का चयन कैसे करे। अब उसके पास जो जो उपाय होते हैं कि या तो वो अपना खुद का जो झुंड है उसमें से छांटेगा या वो छांटेगा किसी से खरीद कर लाएगा, तो दोनों के लिए उसको कुछ न कुछ ध्यान रखना चाहिए। अब जहां बात करते हैं कि उसको अपने खुद के जो झुंड है उसमें से किसी ऊंट का चयन करना है, तो एक चीज हम देखते हैं कि कोई भी जैसे बच्चा पैदा हुआ उसी दिन किसान को या एक आध साल का जब होता है तो उसको तय कर लेना चाहिए कि मुझे कौन सा बच्चा रखना है और कौन सा नहीं रखना है। क्योंकि अगर वो ज्यादा बच्चों को पालेगा तो उसको बाद में उसकी कीमत ज्यादा लगेगी, उसको पालन पोषण में ज्यादा उसका खर्चा आएगा। सही समय पर चुनाव करें और सही समय पर चुनाव करने के लिए अब ये तो आपको पता नहीं है कि इसका दूध कितना होगा। जैसे एक नर पशु है दो साल का वो कितना दूध देगा ये बहुत मुश्किल होता है कि कैसे पता करे। उसी तरह और भी कई चीजें होती है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए कि जैसे वो किसकी संतान है, उसकी माँ का उत्पादन कैसा था, उसका जो पिता या जो सायर बोलते हैं अंग्रेजी में वो कैसा था, उसके साथ साथ देखें कि उसके जो साथ के भाई बहन हैं वो कैसे हैं, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं, बाकी सब चीजों में वो कैसे हैं। इस तरह उसका एक प्रारंभिक अनुमान वो लगा सकता है और उस प्रारंभिक अनुमान को लगा करके वो उस पर ध्यान दे, उसका पालन पोषण उस ढंग से करे कि वो आगे जाके एक अच्छा नर पशु पैदा हो और वो उसको प्रजनन में काम ले सके। तो ये जो चीज है ये वो उसको अपने उसी झुंड में देखना चाहिए। इसके साथ साथ एक उन्नत विधि भी है कि हम क्या करते हैं कि जैसे एक नर पशु है चार पांच साल का हो गया, बड़ा हो गया, उसको हम कई मादाओं पर जैसे प्रयोग में लेते हैं और उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चों का उत्पादन देखते हैं, उसको हम प्रोजेनी टेस्टिंग भी कहते हैं कई बार, और उन बच्चों के उत्पादन के हिसाब से हम उसका ये बताते हैं कि ये जैसे चार में से कौन सा अच्छा था। लेकिन ऊंट के परिप्रेक्ष्य में जब हम ये बात करते हैं तो इसमें कई बाधाएं आती है कि जब एक ऊंट के इतने बच्चे पैदा होते हैं कि आप ये कह पाओ कि हाँ ये इस कार्य के लिए या दूध उत्पादन के लिए सबसे अच्छा है, तब तक उसकी उम्र काफी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। अगर ऊंट की उम्र काफी भी हो गई और अगर आपको ये पाया कि आपने ये ऊंट बहुत अच्छा है तो भी आप उसको तो नहीं लेकिन उसके जो बेटे हैं, उसके जो भाई और भाई के बेटे हैं, उनका प्रयोग आप अपने झुंड में नस्ल सुधार के लिए कर सकते हैं।
પણ પ્રજનન સારું ઊંટ પાલકાને જે ઉન્નત નર ઊંટ ખરીદનો હોય તો વે કિણ બાતારો ધ્યાન રાખે ઓર વો વને કઠે સુ મિલ સકે.
ગૌરાબેન બિલકુલ આપને સહી સવાલ પૂછા કે હર વક્ત ઉસકે લિયે સંભવ નહીં હોતા કે ઉસકે અપને હી ઝુંડ મે અચ્છા પશુ મિલે ઓર ઇસકે લિયે દો તીન ચીજે ઓર હે. અચ્છા પશુ ઉસકે પાસ હે તો ભી બદલના ચાહીએ ઓર અગર ઉસકો ખરીદના હે તો કિન બાતો કા ધ્યાન રખના ચાહીએ. સબસે પહેલે તો વો જબ ભી ખરીદે તો એક અકેલે પશુ કો નહીં દેખે. અક્સર ક્યા હોતા હૈ કે મેલે મે ગયા એક ઊંટ દેખા અચ્છા ડીલ ડોલ કા મિલા ઓર લે લિયા. આપકો જબ ભી કિસી પશુ કા ચયન કરના હો મેરી સલાહ હૈ કે કભી ભી અકેલે પશુ કો નહીં દેખે. ઉસ પશુ કો ઉસ પ્રજનન સમૂહ જિસકો બ્રીડિંગ ગ્રુપ હમ કહેતે હૈ ઉસમે દેખને સે આપકો ઉસકે પૂરા જો જીન કી સંરચના ઓર જીન કા જો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હૈ ઉસમે उसका आपको एक अंदाजा लग जाता है. तो ये सबसे पहला ध्यान रखे कि वो अकेले को नहीं देखे, समूह को देखे. उसके बाद जब प्रजनन के लिए आप ऊंट ले रहे हैं तो उसको चलाकर जरूर देखें, उसकी चाल में कोई कमी नहीं हो. सबसे ज्यादा कई बार होता है कि इनकी ईडर होती है वो टकराती है पैरों से, तो वो ईडर टकरानी नहीं चाहिए. एक और चीज है कि पीछे के पैर कमजोर नहीं हो. ये बीमारी अपने राजस्थान में कई जगह देखी जाती है, जिसको ऊंट पालक कुमरी के नाम से जानते हैं कि जब वो ऊंट उठता और बैठता है तो पीछे के पैर कांपते हैं. तो जिसके पीछे के पैर कांपते हैं वो सही ढंग से प्रजनन के लायक नहीं होता है और उससे दिक्कत होती है. और उसके साथ साथ उसके अंडकोश को भी देख ले कि उसकी कोई किसी कारण से कोई अनुवांशिक विकृति या और कोई चोट या इस तरह की नहीं हो और उसको उठने बैठने में किसी तरह की तकलीफ नहीं हो. ये सारी चीजें वो विशेष रूप से ध्यान रखें. बाकी रंग रूप उसकी इच्छा अनुसार वो खरीद सकता है. स्वस्थ ऊँट हो अच्छी बात है.
और डॉक्टर साहब यही बातें ध्यान, जो मादा ऊँट नहीं खरीदनी पड़े यही बातें ध्यान रखनी चाहिए कि और भी ध्यान रखना चाहिए?
वैसे तो ज्यादातर मादा ऊंट पालक जो होता है उसकी अपनी होती है, लेकिन कभी कभी कोई नया काम शुरू करना चाहे उनको कई बार मादाएं भी खरीदनी होती है और कई बार अच्छी मादा खरीदनी भी चाहिए. इससे क्या होता है कि आपके जो समूह में अनुवांशिक गुण है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है तो अच्छा रहता है. और उसके लिए जब भी वो मादा लाए तो दुग्ध शिराओं का विकास जरूर देखे जो दोनों तरफ होती है. ऊंट पालक अच्छी तरह समझते हैं कि जो दुग्ध शिरा है उसका विकास बहुत अच्छा होना चाहिए. उसके साथ साथ उसके थनों का भी जो विकास है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. तीसरा ये कि थनों में कोई रोग नहीं हो, क्योंकि ये सभी को पता है कि ऊंटों के थन में अगर एक बार बीमारी आ जाती है और अगर वो कड़क पड़ जाता है तो उसका इलाज लगभग असंभव सा हो जाता है, तो उसका नुकसान होता है उसको. तो इस तरह ये तीन चार चीजें वो देखे. साथ में ये भी देखे कि उसका टेम्परामेंट यानी कि व्यवहार ऊंटनी का कैसा है. ज्यादातर ये देखा गया है कि जो सीधी ऊंटनी होती है उसका प्रजनन और दूध उत्पादन भी अच्छा होता है. तो ये भी एक जानकारी वो साथ में रखे तो फायदा हो.
भूम जी भाई देखो आज पावना सु दो बात करनी ही, उन्नत उष्ट प्रजनन और दूध उत्पादन. तो उन्नत उष्ट प्रजनन तो चौकी तरीके समझ में आएगी, मेरी छोटी छोटी बात सगली आपने डॉक्टर साहब बता दी. पर अबे आवे उन्नत दूध उत्पादन दी, तो डॉक्टर साहब ने पूछ ही लेवा बे उन्नत दूध उत्पाद सु आपरो अभिप्राय के इन अर्थ कहिए.
गौराबेन दूध की जैसे ऊँटो में महत्वता बढ़ती जा रही है और इसीलिए हम ऊँटो के दूध पर कई बार बातचीत करते हैं. उन्नत से सीधा सीधा हमारा इसमें मतलब है कि आज के समय में मानव का हाथ कहीं भी अगर लगता है तो उसको उस तरीके को हम पुराना तरीका मानते हैं दूध निकालने में. और दूध निकालने में नहीं, दूध निकालने से लगा के पैक होने तक, यानी कि एक जगह से दूसरे आदमी के जहां वो पिएगा उसको वहां तक पहुंचने तक जहां तक संभव हो हाथ नहीं लगना चाहिए. और वो इसलिए कहते हैं कि न केवल पशु स्वस्थ हो, वो आदमी भी स्वस्थ हो और उसके आदमी के हाथ भी साफ सुथरे हों. उसके साथ साथ कई चीजें और भी होती है कि अब जो समय आ गया वो मशीन मिल्किंग का, यानी कि मशीन से दूध निकालने का समय आ चुका है. और मशीन से दूध निकालने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आदमी का हाथ कहीं नहीं लगता है और वो बराबर उनको केमिकली साफ किया जाता है और उसको हम संग्रहित करते हैं. अच्छा, बीमार पशु को नियमित रूप से स्क्रीनिंग करना, यानी कि आपके समूह में आप रेगुलर ये देखते रहें कि कोई बीमार पशु नहीं हो, और अगर है तो वो अलग हो जाए, ना कि वो मिल्किंग में यानी कि दूध निकालने में आ जाए. साथ के साथ अगर किसी पशु के बाकी तीन थन ठीक है एक खराब है तो उस थन का दूध अलग रखना. ये सारी चीजें बहुत सामान्य चीजें हैं, लेकिन इनको ध्यान रखना आज के समय में आवश्यकता बन गई है और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी हो गया है. तो ये कार्य पशुपालकों को करना चाहिए.
भूम जी भाई देखो डॉक्टर साहब जिनने सामान्य बातें कहवे नहीं वे ऊंट पालकर सरू घनी जरूरी है.
और अब डॉक्टर साहब हना बात बताओ कि बात करना दूध उत्पादन री, तो दूध उत्पादन री दृष्टि सु प्रजनन किन भगत कराना चाहिए या किन भगत कराओ तो लाभदायक हुए?
प्रजनन तो आपको तय करना होता है कि जिस क्षेत्र में जो नस्ल है, जहाँ दूध की नस्ल है, जैसे हम ज्यादातर कच्छी और मेवाड़ी की बात करते हैं, लेकिन आपने ये सवाल पूछा तो मैं एक चीज़ और आप सभी को बताना चाहूँगा, सभी किसान भाइयों को भी बताना चाहूँगा कि एक समय था कि कई क्षेत्रों में ऊँटनी के दूध का कोई व्यापार नहीं होता था, और हम लोग भी जब जाते थे तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता था। जैसे जैसलमेर जाओ, बीकानेर आओ आप, या गंगानगर जाओ, हनुमानगढ़ जाओ, इन क्षेत्रों में कोई भी ऊँटनी के दूध की बात नहीं करता था। यहाँ तक कि जोधपुर जाओ आप, बात नहीं करते थे। जालोर में, सिरोही में, पाली में, सिर्फ पहले जो बात होती थी वो उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में ऊँटनी के दूध की बात होती थी और बड़े आराम से वहाँ पर दूध बिकता था बहुत पुराने समय से। समय के अनुसार जब ये देखा गया कि जितनी आदमी को आवश्यकता है उतना दूध उत्पन्न नहीं हो रहा है गाय और भैंस से, यहाँ तक कि पूरे विश्व स्तर का जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि 16-17% दूध कम पड़ता है जो गाय और भैंस को छोड़ के अन्य पशुओं से आता है, और रेगिस्तानी इलाकों में वो ऊँट से आता है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो प्रकाशन है उनमें लिखा हुआ है। इन सबको हम जब देखते हैं और आज के समय में जब जाते हैं इन क्षेत्रों में तो बहुत आश्चर्य होता है कई बार कि पाली में भी हमें ऊँटनी का दूध बेचने वाले मिलते हैं, उसी तरह सिरोही में बड़ा आराम से दूध बिकता है, जालोर में भी अब ऊँटनी का दूध बिकने लगा है, उदयपुर चित्तौड़ में पहले से बिक रहा था, और इसी तरह इस क्षेत्र का फैलाव होता जा रहा है और ऊँटनी के दूध कच्छ में भी बड़ा आराम से बिक रहा है। तो जो जो ऊँट पालन का मकसद बदलता जा रहा है, और ये जो बात मैंने आपको कही शुरुआत में भी मैंने कहा था कि आपका जो है समय के अनुसार उपयोग बदलता है, और जब उपयोग बदलता है तो आपको चयन प्रक्रिया भी बदलनी चाहिए। कभी आपको एक ऐसा ऊंट चाहिए था जो 20 किलोमीटर की स्पीड से या कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सके, लेकिन आज आपको चाहिए कि एक वो अच्छा दूध देने वाला पशु चाहिए। उसी तरह पहले आपको चाहिए था कि जो भार वहन क्षमता जिसकी बहुत अच्छी हो, लेकिन आज आपको चाहिए कि भार वहन क्षमता की तुलना में दूध उत्पादन उसका बहुत अच्छा हो। तो हमें जब ये दूध उत्पादन क्षमता की बात करनी है तो इसके लिए प्रजनन का जो समय है वो सभी का एक ही है, क्योंकि ये सर्दी में ही प्रजनन करता है, तो प्रजनन तो इसी ऋतु में होगा, लेकिन आपका जो चयन है वो अलग अलग कारणों पर निर्भर करता है और उस पर आपको ध्यान देना चाहिए।
ठीक
है। और बोम जी भाई, अबे मने भी एक बात और ध्यान देना है, देना है कि नहीं, भावना ने भी सही खुवानी है, मनवार भी करनी है, और इन सारू है पखाल मार कने, पर देखो पखाल में गीत काटू नी वो काटू पावना री दायरो, तो पूछ ला पावना ने।
बिल्कुल साहब। डॉक्टर साहब आप किस गीत रोलो सुनो चाहो?
देखो साहब अब समय है ऊँटों में दूध की क्रांति लाने का, तो इसके लिए मैं जैसे देश में श्वेत क्रांति के समय में मंथन एक फिल्म बनी थी और उसका गाना था मेरा घर अंगना ना भूलो ना, ऐसा कुछ वो अगर आप सुना दें तो अच्छा।
बिल्कुल सा
भाई, देखो पावना रे दायरे सरु गीतड़लो तो है ही मारी पखाल में,
आपरी पखाल में सब गीतड़ला है सा, तो आपसे सुनो सा डॉक्टर साहब री दायरो गीतड़लो गौरा बेनी पखाल छु।
मेरो गाम का ठापारे जहाँ दूध की नदियाँ बाहे, जहाँ कोयल टोको गाए, मारे घर आंगना ना भूलो ना। मेरो गाम का ठापारे जहाँ दूध की नदियाँ बाहे, जहाँ कोयल टोको गाए, मारे घर आंगना ना भूलो ना।
आभार आप सुनियो डॉक्टर साहब री दायरो गीतर लो गवरा बैनी पखाल चू।
कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
और इन बेला आप से सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ऊंटारी बाता। और आज चौपाल में जानकारी देने सारु पधारे है डॉक्टर शरद चंद्र मेहता, आप प्रधान वैज्ञानिक है राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। और आज आप बातचीत कर रहे हैं उन्नत उष्ट्र प्रजनन एवं दुग्ध उत्पादन।
और डॉक्टर साहब देखो बात करा ऊंटारी दूध उत्पादन की, तो इन क्षमता कही है, इन वृद्धि कही है, इन महत्व कही है, फायदेमंद किया हुआ है।
देखो गौरा बहन और भौमजी भाई, मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे कि गाय और भैंस के बाद अगर हमारे पास कोई पशु उपलब्ध है जिससे हम दूध की कमी पूरी कर सकते हैं तो वो हमारे पास ऊँट ही है, क्योंकि ऊँट औसतन आपको 7 लीटर दूध प्रतिदिन देता है। ऐसा कोई पशु गाय और भैंस के बाद नहीं है जो आपको 7 लीटर प्रतिदिन दूध दे। उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि आपको ऊँट में अभी तक दूध को लेकर चयन भारत में नहीं हुआ, तो ये जो 7 लीटर है इसको हम बहुत आगे तक ले जा सकते हैं क्योंकि इसका चयन अभी तक हुआ नहीं है। चयनित प्रजनन से इसको हम बढ़ा सकते हैं। हमने हमारे राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र पर भी देखा है, और आजकल जो मेरी गांव में मेवाड़ी और जालोरी पर जो परियोजना चल रही है उसमें हमने खुद गाँव में भी और यहाँ पर भी 10 लीटर प्रतिदिन की सांड बड़े आराम से मिलती है हमारे को। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। और इनका जो पीक समय होता है जब, यानी कि जब ये सबसे ज़्यादा दूध देती है, तो एक ऊँटनी 15 से 16 लीटर तक दूध देती है, तो क्षमता में ऊँटनी किसी तरह से कम नहीं है। इसके साथ साथ ऊँटों में एक और विशेषता है कि वैसे तो ऊँट को मैंने जहाँ शुरुआत की थी कि ये धीमा है, प्रजनन के मामले में काफ़ी धीमा है, लेकिन आप ये देखेंगे कि अगर एक बार प्रजनन हो गया और इसने बच्चा दिया तो ये लगातार 16 महीने तक दूध देता है, और 16 महीने तक दूध देता है तो करीब 3000 लीटर उस लैक्टेशन में दूध दे देता है। तो इसकी क्षमताएँ बहुत ज़्यादा है, हर तरह से ये उपयुक्त है। और आप ये भी देखेंगे कि 48 डिग्री टेम्परेचर में और जब मई और जून का महीना हो तो भगवान ने इसको एक और वरदान दिया है कि जनवरी फरवरी में जो बच्चे पैदा होते हैं और इनका जो सबसे दूध बढ़ने का टाइम होता है वो पहले दूसरे से लगा के 5वें महीने तक बढ़ता है, यानी कि जनवरी फरवरी से जो दूध हुआ वो मई जून में तो पीक पे आता है, यानी कि उस समय एक तरफ गर्मी बहुत है, पानी की कमी है, बच्चों को पानी मिल नहीं रहा होता है, तो ऊँटनी सबसे ज़्यादा दूध देती है और फिर बाद में धीरे धीरे ये कम होता है। तो ये एक प्राकृतिक संतुलन भी है, और इस तरह ऊँट की जो है दूध उत्पादन क्षमता विलक्षण है, बड़े आराम से ये आपको काफ़ी सारा दूध दे सकता है।
तो भूमजी भाई देखो कि क्षमता माते तो आपने भरोसा करना पड़ेगा कि दूध तो गणकरो मिल जावे है।
दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि सारू ऊंट पालकों ने कई सावचेतें रखनी चाहिए डॉक्टर साहब।
देखो मैंने आपको बताया कि पहले तो वो पशु का चयन अच्छी तरह से करे, जो मैंने आपको कई सारे तरीके बताए कि माँ बाप का और बाकी सब उत्पादन देख के उसका चयन करे। उसके साथ साथ कई चीजें बहुत जरूरी होती है कि जैसे आपके समूह में एक नर ऊंट है और वो 3-4 साल से उसको आप काम में ले रहे हैं, तो 3-4 साल के बाद उसको काम में ना लें प्रजनन में, क्योंकि उसकी जो बच्ची हुई है 4 या 5 साल में वो वापस मैच्योर हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो अगर वो बड़ी हो जाती है तो इस तरह अगर वो प्रजनन में आती है तो उसका प्रजनन उस पशु से नहीं कराना चाहिए, ताकि अंतः प्रजनन जिसको अपन इनब्रीडिंग बोलते हैं वो नहीं हो। इनब्रीडिंग से हमेशा बाद में जाके उत्पादन में कमी आने के चांस रहते हैं, रोगों की भी बढ़ोतरी हो जाती है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए जनरली 3 से 4 साल के बाद में उसको पशु बदलना चाहिए, यानी कि नर पशु बदलना चाहिए। दूसरा ये कि नर पशु वो सिर्फ अपने पास के गांव से नहीं बदले, अगर बदलता है तो वो थोड़े दूर के क्षेत्र से बदले, ताकि थोड़े से अनुवांशिक गुण दूसरी तरह के उसमें आ जाएं। तीसरा एक और चीज़ देखते हैं कि हम जब भी बीमारियों का भी एक बहुत महत्व होता है, जो आपका पशु हो नर पशु हो वो ज़्यादा बीमार होने वाला नहीं हो, तो इसके लिए भी जब कभी भी आप चयन करें और ध्यान रखें इस चीज़ का कि जैसे कोई रोग का प्रकोप हुआ है उस वक्त ज़्यादातर पशु आपके उस रोग के प्रकोप से असर में आ गए, लेकिन कोई कोई पशु होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, वो पशु का आप प्रयोग करें। आजकल हम जीन आधारित चयन में भी उन्हीं पशुओं को छांट रहे हैं, और हम ये उन्हीं से ये निकालना चाह रहे हैं कि कौन कौन सा जीन है और कौन कौन सा जीन कॉम्बिनेशन है इसमें, कि चारों तरफ रोग का प्रकोप था, सारी तरफ वो जीवाणु थे, फिर भी वो उस पशु को क्यों नहीं लगे और उसकी क्या क्षमताएँ थी। तो ऐसे पशु को प्राथमिकता दे और नर पशु को बदलता रहे, 3-4 साल में दूसरा पशु काम में ले तो वो अच्छी तरह से उसका उत्पादन बढ़ा पाएगा।
भूमजी भाई डॉक्टर साहब सावचेतियां भी बता दी कि आप ये ध्यान रखा नहीं बता रहो तो दूध उत्पादन क्षमता रे मायने वृद्धि कर सके है ऊंट पालक।
तो गौरा बहन जी को कागजिया तो बोला है उड़ा है और आज आप सामने बैठे भी है डॉक्टर शरद चंद्र जी मेहता साहब, तो कागजिया पढ़ना शुरू करा।
बाचना तो पढ़ी क्योंकि उतरा लेना है।
वो पहलो कागज है श्री शंकर जी रेबारी गाँव ईसवाल और उदयपुर से कागज लिखी है, और वो देखो दूसरो कागज भी जिकी बात लिखी है भाभी मैंने एक सीढ़ी सी लाग रही है नरसिंह रेबारी है रेबारियों का गुड़ा और वो भी उदयपुर से है, और तीजो है नाथा देवासी वो है जोधपुर से। ए सगड़ा एक ही बात लिखी है कि ऊंट नीरे दूध दुकान लगावनी चावा हाँ मान्यता मिली या को मिली नहीं आम हमने बताओ डॉक्टर साहब।
देखो साहब ये बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा रहते हैं हम लोग की ऊँटनी के दूध को मानव के लिए अधिकृत किया जाए, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसकी 17वीं जो बैठक हुई थी उस 17वीं बैठक में ऊँटनी के दूध को मानव के लिए उपयोगी करते हुए मान्यता प्रदान कर दी गई है, और उसके साथ साथ उन्होंने इसके कुछ मापदंड भी निर्धारित कर दिए गए हैं कि उन्होंने अभी जो मान्यता दी है वो 3% फेट और 6.5% SNF पे दी है।
देखो भूम जी भाई ये दो कागज है नी ये दोनों एक ही जानकारी चावे है, ये चावे है कि ऊँटनी रे दूध रो मानव रोगा में कई उपयोग वे इनसे संबंधित जानकारी।
देखो साहब मानव रोगों में उपयोग के ऊपर अपन ने यहाँ ऊँटानी बात कार्यक्रम में भी डॉक्टर राघवेंद्र सिंह के साथ बातचीत की थी और उन्होंने काफी जानकारी दी, उन्होंने मेडिकल कॉलेज के साथ जो जो भी कार्य किए हैं वो उस कार्यक्रम में भी हमने बताए थे, और इसके साथ साथ उसका एक हमने लीफलेट भी प्रकाशित किया है। लोगों से भी अनुरोध है कि वो अपने स्वास्थ्य के लिए ऊँटनी के दूध का प्रयोग करें, इससे ऊँटनी के दूध को बढ़ावा मिलेगा, ऊँट को बढ़ावा मिलेगा और ऊँट का संरक्षण होगा।
ओम जी भाई जी को जी को कागज आया है हमारा ठाव का उथला डॉक्टर साहब दिया है, पर यूं तो देखो क्या करे कि हाजिरी हाथी हुए, पर देखो मने तो भरोसा है कि जिको भी ऊँट पालक घरे बैठ भी ऊँटारी बात सुने है नी माने भी इन ज्ञान री हाथी रे माने सुक्की इनकी बात तो मिले ही है, पर बोम जी भाई और जिको नुआ ऊँट पालक है जिको आपस जुड़ रहा है बारे सर ठिकाणो तो बताना पड़ी।
हाँ बिल्कुल सा ठिकाणो लिखो सा ऊँटारी बाता कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बीकानेर माने आपरे कागदारी अडीक रेवेला सा, और आज देखो चौपान में जानकारी देउन सारू पधार्या है डॉक्टर शरद चंद्र मेहता आप प्रधान वैज्ञानिक है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, और आज आप बातचीत करी उन्नत उष्ण प्रजनन एवं दुग्ध उत्पादन। डॉक्टर साहब आप चौपाल में पधार्या और मारे ऊँट पालका ने इतनी बढ़िया अच्छी जानकारी दी इन सारू मैं आपने करा धन्यवाद और आपने मैं करा राम राम सा
राम राम सा।
तो सा ओह ऊँटारी बाता कार्यक्रम संयोजक श्री अमित सिंह, प्रस्तुति श्री मिलिंद पांडे, सहभागिता थी श्रीमती प्रभा थानवी और राम सहाय हर्षदी। अबे आज्ञा दिलाओ सा राम राम सा।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर।
ऊँटारी बाता आकाशवाणी बीकानेर जोधपुर उदयपुर और कोटा से एक साथ प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक प्रसारित होने वाला कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे विशेषज्ञों से ऊँटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ।